मोक्षमार्गस्य नेतारं भृतारं कर्मभूतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्निरभे। यद्यस्य मनः परे यस्य प्रत्यात्मा अयं विशेषः। यदि इस मनः परे ज्ञान के प्रत्येक भेद में ये भेद है, मन परे ज्ञान के दो भेद हैं, उन दोनों भेदों में विशुद्धि और अप्रतिपात का अंतर है। अर्थात जो ऋज्जुमति है उसकी विशुद्धि विपुल मति से कम है। ऋज्जुमति प्रतिपाती है और विपुल मति अप्रतिपाती है। ऋज्जुमति वालों के लिए नियम नहीं है कि वे उस भाव से मोक्ष प्राप्त करें, लेकिन विपुलमति ज्ञान जिनको भी होगा वो नियम तो है, तद्भो मोक्षगामी होंगे। तो अथ अब अनयो रवदि मन परेयो तो विशेष इत्यतः। बोले कि सर इन दोनों में क्या अंतर होगा, किस प्रकार से अंतर करेंगे? अवधि और मनःपरय, मनःपरय के दो भेदों में तो अंतर बता दिया, अब अवधि ज्ञान और मनःपरय ज्ञान इन दोनों में क्या अंतर है, कैसे अंतर करेंगे? तो आचार्य कहते हैं किन किन प्रकार से, किन किन अपेक्षाओं से अंतर हो सकता है अवधि और मनःपरय में, तो बताते हैं। विशुद्ध क्षेत्र स्वामी विषयेभ्योवधि मनःपरययो, विशुद्धि की अपेक्षा से, क्षेत्र की अपेक्षा से, स्वामी की अपेक्षा से और विषय की अपेक्षा से, चार अपेक्षाएं हुई। अवधि और मनःपरय ज्ञान में विशुद्धियां अलग अलग होती हैं। अवधि ज्ञान का क्षेत्र और मनःपरय ज्ञान का क्षेत्र अलग होता है। अवधि ज्ञान के स्वामी और मनःपरय ज्ञान के स्वामी अलग होते हैं। अवधि ज्ञान का विषय और मनःपरय ज्ञान का विषय अलग अलग होता है। इस तरह चार अपेक्षाओं से अवधि और मनःपरय ज्ञान में अंतर बतलाया है। तत्र उन चारों में अवधि और मनःपरय विशुद्धतर है, अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मनःपरय ज्ञान और विशुद्ध होता है। कुतः किस प्रकार से? सूक्ष्म विषयत्व, क्योंकि वो सूक्ष्म को विषय कर लेता है। क्षेत्रमुक्तम, क्षेत्र बता चुके हैं, मनःपरय ज्ञान का क्षेत्र कितना है 45 लाख योजन और अवधि ज्ञान का क्षेत्र कितना है पूरा लोक, सर्वावधिक ज्ञान जो है संपूर्ण लोक को विषय कर लेता है। स्वामित्व प्रत्युच्यते, स्वामी की अपेक्षा से कथन किया जाता है कि अवधि ज्ञान के स्वामी कौन होते हैं, मनःपरय ज्ञान के स्वामी कौन होते हैं। तो आचार्य कहते हैं प्रकृष्ट चारित्र गुणोपेतेषु वर्तते अप्रमत्तादि क्षीण दशायांतेषु। मनःपरय ज्ञान जो होता है वह उत्कृष्ट चारित्र गुण से संपन्न अप्रमत्तादि क्षीण कषाय, छठे से वर्तते अप्रमत्तादि, सातवें से बारहवें गुणस्थान तक जो मुनि है उनमें होता है। हो सकता है इसमें पाठ में कुछ जो खंडाकार डला है ऐसा लगता है कि वो आवश्यक नहीं है, कारण कि मनःपरय ज्ञान के जो स्वामी होते हैं वो छठे गुणस्थान वाले भी होते हैं। छठे गुणस्थान वाले मुनियों के पास भी मनःपरय ज्ञान होता है, और एक खंडाकार डालने से हो सकता है छपाई में ऐसी त्रुटि हुई हो, उसमें ये समस्या आ जाती है कि सातवें से बारहवें गुण स्थान तक मन परिज्ञान हो जाता है। खैर ये महत्व का विषय नहीं है यहाँ पर, मूल जो धारा चल रही है उस अपेक्षा से ये तो सिर्फ प्रिंटिंग प्रेस का कमाल है कि जिसके कारण अगर थोड़ा सा इधर उधर हो जाता है तो अर्थ कहीं से कहीं चला जाता है। वास्तव में देखा जाए तो अपन दूसरी सर्वार सिद्धि की जो प्रति है उसमें से अधिक निकाल लेते हैं। अन्य प्रतियों में अभी एक प्रति हमारे सामने भी है और एक प्रति वहां पर भी है, तो इन दो प्रतियों में वो खंडाकार नहीं बना, तो खंडाकार न होना ही सिद्धांत से उचित बैठता है। बिल्कुल ठीक है। प्रमत्तादि क्षीण कषाय यानी छठे सातवें आठवें नौवें दसवें ग्यारहवें बारहवें, ग्यारहवें में तो नहीं होता क्योंकि विपुल मति के साथ ग्यारहवें गुण स्थान में जाते नहीं, ग्यारहवें से वापस नीचे आना पड़ता है, तो इसलिए इतना अपन ले सकते हैं। पर अभी चर्चा चल रही है मन परिज्ञान की, तो मन परिज्ञान को अगर अपन ले तो फिर उसमें ऋजुमति भी आता है, तो ग्यारहवें में भी अपन मन परिज्ञान को प्राप्त करते हैं अर्थात उसका अस्तित्व ग्यारहवें में भी अपने को मिलता है। प्रमत्तादिषु क्षीण कषायांतेषु, प्रमत्त गुणस्थान को आदि लेकर क्षीण कषाय तक, ये मुनियों के गुणस्थान है, मन परिज्ञान केवल मुनियों को होता है, आर्यिकाओं को भी नहीं हो सकता। तत्र चोत्पद्यमानः, और उनमें उत्पन्न होता हुआ प्रवर्धमान चारित्रेषु नहीं चारित्रेषु, जो जिनका चारित्र ऊपर की ओर उठ रहा है उनमें होता है, जिनका चारित्र थोड़ा नीचे तरफ जा रहा है तो सहमा सहम लब्धि स्थान की अपेक्षा से, ये तो चारित्र शब्द सुनकर के लोग ये कल्पना कर लेते हैं कि वो चारित्र से पतित हो रहे हैं, यहाँ पर पतित होने वाली बात नहीं है, चारित्र में ही जो संयम लब्धि स्थान होते हैं अलग अलग विशुद्धि के स्थान होते हैं, उन विशुद्धि के स्थानों में ऊपर से नीचे की तरफ कोई आ रहे हो तो फिर वहां पर मन परिज्ञान की उत्पत्ति नहीं हो सकती, नीचे से ऊपर की ओर जा रहे हो तो फिर मन परिज्ञान की उत्पत्ति होती है। और कहते हैं प्रवर्धमान चारित्रेषु चोत्पद्यमान सप्तविधान सप्तविधान्यतरवृद्धि प्राप्तेषु पूजायते नेत्रेषु, और बड़ी बात कह रहे हैं कि मन परिज्ञान बढ़ते हुए चारित्र को धारण करने वाले मुनिराजों में उत्पन्न होते हुए भी ऐसे मुनियों में उत्पन्न होता है जो सात रिद्धियों में से किसी रिद्धि को प्राप्त कर चुके हैं, जो रिद्धिधारी नहीं है उनमें मन परिज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता, पहले से ही उनके पास कोई अन्य रिद्धि हो तब मन परिज्ञान होगा, सीधे सीधे मन परिज्ञान नहीं होता। रिद्धि प्राप्तेषु केषुचित् न सर्वेषु, पर रिद्धि प्राप्त करने वालों में भी कुछ मुनियों में मन परिज्ञान होता है, सब में नहीं। कितना दुर्लभ है मन परिज्ञान, इत्यस्यायं स्वामी विशेषु, इस तरह यह इस मन परिज्ञान के स्वामी में भेद है, अवधि ज्ञान की अपेक्षा से मन परिज्ञान के स्वामी जो है उनमें ये अंतर है। वैसे प्रधानतः यहाँ पर विपुलमति ज्ञान को विवक्षित किया गया, क्योंकि प्रवर्धमान चारित्र वाली जो बात आती है वो विपुल मते की अपेक्षा से घटित होती है। पिछले ही सूत्र में ये बात आ चुकी है। देखिए विपुल मतर विशिष्ट सर्वार सिद्धि के 220वें अनुच्छेद में लिखा है, अप्रतिपातेनापि विपुल मतिर विशिष्ट। अप्रतिपात की अपेक्षा से भी विपुल मति ऋजुमति से विशेष है। क्यों? स्वामिनाम प्रवर्धमान चारित्रोदयत्वात्। जो विपुल मति के स्वामी होते हैं उनके पास प्रवर्धमान चारित्र का उदय होता है। तो इसका अर्थ हुआ कि ऋजुमति के जो स्वामी है उनके पास प्रवर्धमान चारित्र नहीं होता। वही बात आगे भी लिखी हुई है, ऋजुमति पुनः प्रतिपाति, वही लिखा हुआ, और ऋजुमति प्रतिपाति है स्वामिनाम कषाय उद्रेकात्, स्वामियों के कषाय उद्रेक वश हीयमान चारित्रोदयत्वात्। नीचे की ओर आता हुआ जो संयम लब्धि स्थान रूप चारित्र है उसका उदय होने के कारण। तो यहाँ पर जो अवधि और मन परिज्ञान का भेद बतला रहा है वो अवधि में जो सबसे उच्च है वो सर्वावधि, मन परिज्ञ में जो सबसे उत्कृष्ट है विपुल मति। अंतर बता रहे हैं, विशिष्ट संयम ग्रहणम वाक्य प्रकृतम, अथवा विशिष्ट संयम को ग्रहण करना इस वाक्य में प्रकरण को प्राप्त है। अवधि पुनः और अवधि ज्ञान, ये तो मन परिज्ञ ज्ञान की बात होगी। अवधि ज्ञान की क्या स्थिति है? चातुर्गतिकेष्विति, चारों गतियों में उत्पन्न होने वाले जीवों के पास हो सकता है। इति इसलिए स्वामी भेदादप्यमेयोर विशेषः, स्वामी के भेद की अपेक्षा से भी इन दोनों में अंतर है। और विषय में अंतर जो है वो पहले बतलाया जा चुका है। इदानीं केवल ज्ञान लक्षणाभिधानं प्राप्त कालम, अब अवधि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान मन परिज्ञान चारों का वर्णन करने के बाद अब किसकी बारी आती है, क्रम में कौन सा ज्ञान आएगा? केवल ज्ञान। लेकिन तद उल्लंघ्य, आचार्य महाराज कहते हैं कि उमा स्वामी आचार्य केवल ज्ञान के वर्णन का उल्लंघन कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे वर्णन, उसका उल्लंघन करके ज्ञानानाम विषय निबंध परीक्षते, जितने भी ज्ञान है उन सब के विषय क्या क्या है उसकी परीक्षा करते हैं, अर्थात उनके द्वारा इन ज्ञान के ज्ञानों के विषय की परीक्षा की जाती है। कुतः? क्यों? बोले तस्य, केवल ज्ञान का जो वर्णन है, मोह क्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम इत्यत्र वक्ष्यमाणत्वात्, केवल ज्ञान अलग से ही वहां बतलाया जाने वाला है मोक्षाधिकार के पहले सूत्र में। मोह क्षयाज ज्ञान दर्शनावरणांतराय क्षयाच केवलम, उसके लिए सूत्र ही बना हुआ है। तो यहां पर अलग से उसका व्याख्यान न करते हुए ज्ञान जितने ज्ञान है उन सब के विषय बतला रहे हैं। यद्येवम् आद्योरेव तावन् मतिश्रुतयोर् विषय निबन्ध उच्यताम् इत्यतः। तो फिर शिष्य कहते हैं कि यदि ऐसी बात है तो फिर पहले के जो दो हैं उन्हीं का, कौन से दो हैं? मति और श्रुति, उन्हीं का जो विषय निबंध है वह कहा जाए, उच्चताम वह कहा जाए। इति अतः, इसलिए अब यहां से यह सूत्र कहते हैं, मति श्रुतयोर निबंधो द्रव्येश व सर्व पर्यायीश, मति और श्रुत का जो निबंध अर्थात विषय संबंध है वह द्रव्येश असर्व पर्यायीश द्रव्येश, कुछ पर्यायों के साथ सभी द्रव्यों को मति और श्रुति ज्ञान जानते हैं। कुछ पर्यायों के साथ क्यों? क्योंकि उससे अधिक सीमा नहीं मति और श्रुति ज्ञान की, उससे ज्यादा जान नहीं सकते। असर्व पर्यायेषु, सर्व पर्यायेषु न किंतु असर्व पर्यायेषु, भक्ति परिणामो भवति इति विषयस्य इत्यपि सम्बध्यते। ये भी प्रेस के कारण थोड़ा सा पढ़ने में हो गया। निबंधनम निबंधक कस्य विषयस्य तद विषय ग्रहण कर्तव्य न कर्तव्य प्रकृतम विषय ग्रहण को प्रकृतम विशुद्धि क्षेत्र स्वामी विषय इत्यत्र अतस तस्यार्थवशात् विभक्ति परिणाम भवति इति विषयस्य इत्यादि संबंधित है। ठीक है, मति और शुद्ध ज्ञान का जो विषय है वो सब द्रव्यों में जाता है, लेकिन कुछ पर्यायों तक, सब पर्यायों तक मति और शुद्ध ज्ञान नहीं जा सकते, ये इसका सार है। धर्मास्तिका आदि अतीन्द्रियाणि, कई ऐसे द्रव्य हैं जो इंद्रियों के विषय नहीं है, तेषु मति ज्ञानं न प्रवर्तते, उनमें मति ज्ञान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। अतः सर्व द्रव्येषु मति ज्ञानं वर्तते इति अयुक्तं, शंकाकार की शंका है कि कई द्रव्य ऐसे हैं जो अतीन्द्रिय हैं, तो उनको मति ज्ञान कैसे जान सकता है। आचार्य उत्तर देते हैं, नहीं शुद्ध अनिंद्रियाख्यम करण अस्ति तदालंबनो नैन्द्रियावरण क्षयोक्षम लब्धिपूर्वक उपयोग लब्धिपूर्वक उपयोग वग्रहादि रूपम प्रागेवोपजाते। बोले कि मन से इनको ग्रहण किया जा सकता है, शास्त्रों का उपदेश सुन रहे हैं, इनमें छह द्रव्यों का वर्णन आ रहा है, तो अपन अपने मन से ग्रहण कर सकते हैं। तो पहले जो अपन ग्रहण करेंगे वो मति ज्ञान होगा, फिर उस पर विशेष विचार करेंगे वो शुद्ध ज्ञान होगा। और ततस उसके बाद तत्पूर्व शुद्ध ज्ञान होगा, मति ज्ञान के कारण शुद्ध ज्ञान होगा। तो मति और शुद्ध ज्ञान के द्वारा छह द्रव्य विषय किए जाते। अब प्रश्न आता है, अथ मतिश्रुतयो अनंतर निर्देशार्हस्य अवधेहि को विषय निबंधे के अतः आह। अब मति और श्रुति के पश्चात जो निर्देश के अर्ह अर्ह का अर्ध तो योग्य है, ऐसे अर्हस्य अवधेह जो अवधि ज्ञान है उसका, उस अवधि ज्ञान का कोई विषय निबंध के होता है। विषय निबंध क्या है, इसलिए इस प्रश्न के उठने के कारण अतः आहा आचार्य कहते हैं, कैसे आचार्य उमा स्वामी रूपी पदार्थों में अवधि ज्ञान का विषय संबंध बनता है। विषय निबंध वर्तते रूपीषु इत्यनेन कुद्राः कुद्गल द्रव्य संबंधाश्च जीवा पर जीवन। कोई सोचेगा रूपिणा कुद्गला, तत्कार सूत्र पढ़ा है लोगों ने, तो आगे एक सूत्र आने वाला है रूपिणा कुद्गला, रूपी द्रव्य कौन से हैं, पुद्गल। और यहाँ कह रहे हैं रूपेश्व अवधेह, रूपियों में अवधि ज्ञान का प्रवेश है। तो ऐसा अर्थ निकाल ले कि केवल पुद्गल द्रव्य को ही अवधि ज्ञान जानता है, लेकिन आचार्य महाराज कहते हैं कि पुद्गल द्रव्य से जो संबंध को प्राप्त है ऐसे जीवों को भी अवधिक ज्ञान जान लेता है। जिन जीवों के साथ पुद्गल का बंध हुआ है उनको भी अवधिक ज्ञान जान लेता है, सिद्ध जीवों को नहीं जान सकता। बाकी संसारी जीव जो है जिनके साथ कर्मों का बंध है, शरीर है, उनको जान लेता है अवधिक ज्ञान, क्योंकि ये भी पुद्गल है। अथ अवधिक ज्ञान के बारे में एक बात और कह रहे हैं, रूपेश्वपि भवन न सर्वपर्यायेषु, रूपियों में भी ये अवधि ज्ञान होता है। मतलब अवधि ज्ञान रूपियों के प्रति जब उत्पन्न होता है तो सब पर्यायों तक नहीं जा सकता, स्वयोग्येषु एव इत्यवधारणार्थ असर्वपर्यायेषु तभी संबध्यते। तो ये जो असर्वपर्यायेषु आया था ना पिछले सूत्र में, उसका असर्व पर्यायेषु रूपेषु भी लगा है, वहां द्रव्येषु लगा था, यहां पर रूपेषु द्रव्येषु असर्व पर्यायेषु अवधेह विषय निबंध ऐसा वाक्य बनेगा। यानी कुछ पर्यायों तक पुद्गल और पुद्गल से संबंधित जीवों को अवधिक ज्ञान अपना विषय बना सकता है, ये इसका अर्थ। तदनंतर निर्देश भाजो मन पर्यायस्य को विषय निबंधन इत्यतः, अब अवधि ज्ञान के पश्चात जो निर्देश को प्राप्त हुआ था जिसका कथन किया गया था, ऐसे मन पर्याय का विषय संबंध कहाँ कहाँ करते हैं या कितना है या क्या है, इस तरह प्रश्न उठने पर आचार्य कहते हैं तदनंत भागे मन परिवर्तन, उस अवधि ज्ञान के अनंत भाग में मन परे ज्ञान का विषय संबंध मिल जाता है। यानी अवधि ज्ञान ने जिसको जाना है उसके अनंत टुकड़े कर दो तो एक टुकड़े को मन परे ज्ञान जान सकता है, इतना बारीक उसका विषय है। अवधि ज्ञान इस खंड को जान रहा है, मन परे ज्ञान इसके अनंत खंड करने के बाद जो एक खंड होता है उसको जान लेता है। लेकिन रूपी द्रव्य को, अरूपी को नहीं, क्योंकि तदनंत भागे उस अवधि के अनंत में भाग, अवधि ज्ञान से जाने हुए पदार्थ के अनंत में भाग तक मन परे ज्ञान जा रहा है। तो अवधि ज्ञान किसको जान रहा है, रूपी को, तो मन परे ज्ञान उसकी सूक्ष्मता में जाएगा, अरूपी में नहीं जाएगा। अथांते यम निर्दिष्टम केवल ध्यानम तस्य को विषय निबंध उत्पदा है, अब इसके बाद अंत में जिसका नाम आया था केवल ज्ञान, वो किसको किसको जानता है, ये प्रश्न आने पर उसका उत्तर आचार्य महाराज 29वें सूत्र में देते हैं। लेकिन चूंकि केवल ज्ञान का जो विषय है उसको हमें ऐसा लगता है कि थोड़ा सावधानी से और अलग से अपन समझेंगे तो अधिक उपयुक्त रहेगा, तो आज अपन मति श्रुत अवधि और मनापरे के विषय तक अपना स्वाध्याय रखते हैं, केवल ज्ञान का जो विषय है उसको अपन आगामी सत्र में ले लेंगे। जय जयति शास्त्र।